मेरे प्यारे छात्रों, हम साहित्य वर्ग प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्राचीन एवं निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत कबीर ग्रंथावली नाम की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो दूसरी इकाई है कबीर का जीवन और रचनात्मक परिचय के बारे में हम इस व्याख्यान में विचार करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील कुमार लवटे, इसके पहले भी मैं आपसे परिचित हूं। इस व्याख्यान के दौरान मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि कबीर की निजी जिंदगी कैसी थी। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी साहित्यकार को जानने के लिए ये जरूरी होता है कि उसका जीवन क्या है। जब तक हम किसी साहित्यकार या कवि की जाति जिंदगी को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि यह ऐसा क्यों बोलता है या ऐसा क्यों लिखता है, इसकी सोच ऐसी क्यों है। कबीर आप जानते हैं कि हिंदी भक्ति काल के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा है, ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसके अत्यंत श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कबीर ने अपने काव्य के जरिए एक नया सदाचारी सद्व्यवहारी धर्म हमें बताया और वह बताते समय सहज रूप से कबीर पारंपरिक आडंबरों और कर्मकांडों को हेय मानते हैं, उसका विरोध करते हैं और उसके जरिए भक्ति के अंतर्गत आत्मिकता सदाचार सभ्यता का पर्याय वे हमें देते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि धर्म और ईश्वर को लेकर एक नई मान्यता महात्मा कबीर ने अपनी कविता के जरिए, अपने काव्य के जरिए, अपने विचार के जरिए हमें सामने रखा है, और वह भी कितने सरल ढंग से। कभी कभी मनुष्य का अनपढ़ होना वरदान होता है, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं पढ़े लिखे लोगों का विरोध नहीं करता, लेकिन हमें इस बात को कभी न कभी समझ लेना चाहिए कि सही शिक्षा क्या होती है। हमारे यहां दो शब्द चलते हैं, एक है एजुकेशन और दूसरा है विजडम। ये विजडम शब्द वाइज से बना हुआ शब्द है कि आप शिक्षित है या समझदार है। मेरी दृष्टि से शिक्षित होने से जरूरी है कि आप समझदार बने। हमारा नायक कवि किसी पाठशाला में जाकर या किसी गुरुजी के पैर में बैठकर पढ़ा हुआ नहीं था। काला अक्षर भैंस बराबर उसकी स्थिति थी, वह अक्षर ज्ञान नहीं जानता था, लेकिन उसने जो शिक्षा ग्रहण की वो अपनी जिंदगी से, अपने भटकाव से, अपनी यात्रा से, लोगों को देखना, लोगों को समझना, लोगों की जिंदगी को समझना, समस्याओं को जान लेना, ये उसकी सही शिक्षा पद्धति थी। कि हमारे देहातों में बसे जो हमारे किसान भाई हैं, उनका ज्ञान देखो, उनकी समझदारी देखो, तो कबीर की विद्वत्ता का सही अंदाज आपको हो पाएगा। वे समाज सुधारक थे, कितनी रूढ़ियों प्रथाओं का उन्होंने डटकर विरोध किया है, कितने भेदों का उन्होंने विरोध किया है। ऐसा ये जो कबीर था उसकी जिंदगी के हर बात को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है, क्योंकि कबीर ने अपने बारे में बहुत कम लिखा है। उन्होंने जो सैकड़ों पद लिखे, उन सैकड़ों पदों में बहुत कम पद ऐसे हैं कि जो उनके अंतःसाक्ष के साधन बनते हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया है कि इतिहास काल में जहां सबूत नहीं होते वहां परिस्थितिजन सबूत ही हमारे हाथ हमारे काम आते हैं। कबीर ने अपने बीजक में समय समय पर प्रसंगवश अपने बारे में लिखा है। वैसे उन्होंने जन्म के बारे में एक जगह लिखा है, उनका ही एक दोहा है, 1455 साल गए चंद्रवार इकठाट ठहे, जेठ सुदी बरसात को पूरन मासी तिथि प्रगट भय। इसका अर्थ ये होता है मेरे प्यारे छात्रों कि 1455 के बाद माने 1456 में जेठ पूर्णमासी थी यानी ज्येष्ठ महीना था और वह चंद्रवार था माने सोमवार था। इसका अर्थ यह होता है कि कबीर का जन्म 1456 में हुआ था और आज भी तरह तरह के विवादों के बाद भी हम देखा करेंगे कि लगभग 13वीं शती के खत्म होते होते यानी 14वीं शताब्दी के खत्म होते होते 1399 में आपका जन्म हो गया था, ऐसा आपको दिखाई देता है। यानी एक तरह से जो 15वीं 16वीं शती है हमारी, उस संवत और ईस्वी सन को लेकर मध्यकाल स्थूल रूप से जिसको आप कहा करेंगे, ये मध्यकाल में कबीर का आविर्भाव हुआ है, ऐसा आपको दिखाई देगा। कहां जन्म हुआ था कबीर का? तो कबीर ने स्वयं एक जगह ऐसा लिखा है कि काशी में हम प्रगट भय, यानी हमारा आविर्भाव हमारा जन्म काशी में हुआ, रामानंद चेताए। ये रामानंद माने स्वामी रामानंद। कबीर के जीवन को समझने के लिए ये पद बहुत महत्व का है। इस पद में इस पंक्ति में दो बातें कबीर ने अंतसाक्ष के रूप में बताई है। वो क्या है कि काशी में हम प्रगट भए, काशी में हमारा जन्म हुआ, और रामानंद चेताए, मेरे जीवन में जो उर्जितावस्था आ गई, मुझे जो जागृति आ गई, मुझमें जो एक सयानापन आ गया, वह स्वामी रामानंद ने जो शिक्षा दीक्षा मुझे दी, जो सबक दे दी, उपदेश दे दिए, उसके कारण मेरा मन सचेत हो गया, ईश्वर के प्रति जागृत हो गया, ऐसा हम उनके जन्म स्थान को लेकर भी जानते हैं। यह वह काल था मध्यकाल 13वीं 14वीं शताब्दी का। इस काल में मनुष्य का परिचय जाति के आधार पर हुआ करता था। मुझे भी याद है कि मैं पंढरपुर में पढ़ा करता था। मुझे स्कूल का वो पहला दिन याद है कि गुरुजी ने मुझे एक प्रश्न किया था। प्रश्न था मराठी में, मैं समझाना चाहूंगा, तू कुणाचारे। तू कुणाचारे का अर्थ था कि तू भट्टाचा बामणाचा महाराचा कुणाचा। मनुष्य की पहचान जाति के आधार पर होने का वह समय था। मैं ये बात 20वीं शताब्दी के मध्य की बता रहा हूं, लेकिन कबीर का काल यदि आप हमारे पहले भी 500-600 वर्ष के पहले का समाज जीवन यदि आप तर्क से और कल्पना से जानने का प्रयास करेंगे, तो उस समय जाति ही मनुष्य की पहचान थी। मनुष्य का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं था दोस्तों। बात बुरी थी लेकिन वह हकीकत थी। कबीर ने स्वयं बीजक में लिखा है, तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, बूझो मौर गियाना। कि अरे तुम ब्राह्मण हो और मैं जुलाहा हूं। जुलाहा उस समय मनुष्य की पहचान उसके व्यवसाय, वो क्या काम करता है, इसके आधार पर ही उसकी पहचान होती थी। कबीर जुलाहा परिवार में यानी बुनकर परिवार में, वस्त्र बुनने वाले परिवार में, कोष्टी मराठी में जिसको कहते हैं, उस समुदाय में पले बढ़े थे। और उनके जन्म को लेकर भी दोस्तों एक बात बताई जाती है कि कबीर की मां का पता नहीं है। कबीर गोद लिया हुआ बच्चा था। हमारे मराठी में एक कवि थे नारायण सुर्वे, मुझे याद है कि उनके अंतिम दिन यही नासिक में गुजरे थे, मैं मिला था उन दिनों उनसे। वो कहा करते थे, उनकी एक आत्मकथा आने वाली थी, नहीं आ पाई। उसका शीर्षक था बाळग लेला पोर, सांभाळ लेला मुलगा। कबीर भी गोद लिया हुआ लड़का था। बात ऐसी थी कि एक कुमारी माता थी, विधवा थी बेचारी, और विधवा होकर भी बच्चा होने पर समाज भय की लज्जा और शर्म महसूस करती थी, अपने आप को पतनशील मानती थी उस समय के संदर्भ में। उसने अपने उस बेटे को पानी के प्रवाह में छोड़ दिया। यह जुलाहा परिवार था। इस जुलाहा परिवार ने उस पानी में बहती जा रही टोकरी में होने वाले उस बच्चे को, जिसने गंगार्पण किया था मां ने, उसको उन्होंने पाला पोसा। वो जो जुलाहा परिवार था, मुस्लिम परिवार, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने प्यार से इस बेटे को पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। ये कबीर जो नाम है उसका अर्थ ही होता है, देखो, सर्वश्रेष्ठ। हमारा जो हिंदी का पहला इतिहासकार है गारसा दत्तासी, उसका तो ये कहना है कि कबीर नाम नहीं है, ये उपाधि है। उसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ होना, कि ऐसे जो बच्चे होते हैं जो समाज के अन्याय और अत्याचार के शिकार होते हैं, वो पैदाइशी समय को परास्त करने की शक्ति लेकर पैदा होते हैं। ऐसे कबीर भी पैदा हुए थे। कबीर ने जाति के बारे में और बताया है कि जाति जुलाहो नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कि कैसा जीवन था कबीर का, कि किसी एक जगह बेचारे नहीं रह पाए। मैं ये नहीं कहता कि पेट पालने के लिए, लेकिन जीने के लिए आदमी को ये जिजीविषा होती है, आदमी को मजबूर करती है भटकने के। कबीर जगह जगह भटके, मगहर गए, काशी गए, कनौज गए, कहां कहां नहीं गए कबीर। कबीर की जिंदगी में आपको पता चलेगा कि बनी बनी फिरी उदासी, वन वन जाकर मैं उदास होकर घूमता फिरता रहा, अपनी जिंदगी को बनाता रहा। ऐसी जिंदगी जिस कबीर को मिली थी, उसने अपने पुरुषार्थ से, अपनी ज्ञान साधना से, अपनी मेधावी बुद्धि से ऐसा नाम रोशन किया कि उसको पालने वाले उसके जो माता पिता थे, जुलाहा परिवार के लोग थे, वो सचमुच धन्य अनुभव करते होंगे। कबीर का जो सारा परिवार था, वो परिवार एक तो भरा फूला फला परिवार था। उनकी जो मां थी, अर्थात जिसने पाला पोसा, उसका नाम नीमा था। पिताजी नीरू कहलाते थे। निर्गुण शाखा में एक और बात दोस्तों दिखाई देती है कि इसके पूर्व माने कबीर या भक्ति मार्ग का हमारा साहित्य निर्माण होने के पहले के कालखंड में, माने आदिकाल में, प्राचीन काल में, हमारे यहां बहुत सारे संप्रदाय पैदा हुए, जैसे सूफी संप्रदाय है, ये संत संप्रदाय है। वैसे पहले नाथ संप्रदाय था, सिद्ध संप्रदाय था, जैन संप्रदाय था, बौद्ध संप्रदाय था। विशेषकर नाथों और सिद्धों में एक बात ऐसी चलती थी कि उनमें, उस संप्रदाय में, जाति पाति का तो महत्व था ही, लेकिन साथ ही वे अपने आप को योगी महात्मा सिद्ध करने के लिए वे अग्रहस्थ रहा करते थे, माने ब्रह्मचारी रहा करते थे, और उनका ब्रह्मचर्य ही उनकी श्रेष्ठता का लक्षण था, निशानी थी। लेकिन यहां भक्तिकाल में आकर जितने संत आपको दिखाई देंगे वे सारे शादीशुदा थे। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिद्धों और नाथों या बुद्धों के परवर्ती काल में, उत्तरार्ध में इन सारे संप्रदायों के, आपको ऐसा दिखाई देगा कि वे बात तो ब्रह्मचर्य की करते थे लेकिन व्यवहार उनका ब्रह्मचर्य का नहीं रहा करता था। इससे सीख लेकर परवर्ती काल के जितने भी संत महात्मा हुए उन्होंने बेहतर समझा कि दुराचार करने की अपेक्षा ये ठीक है कि हम एक व्यवहारी जीने का तरीका अपनाएं, और इसलिए सारे संत, लगभग सारे संत आपको शादीशुदा, गृहस्थ, संसारी, घर बसाने वाले दिखाई देते हैं। कबीर भी उनमें से एक है। कबीर की शादी हुई थी, उनकी पत्नी का नाम लोई था। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा बताया जाता है कि महात्मा भले हो कोई, वो पहले मनुष्य होता है। महात्मा गांधी भी देखो मनुष्य थे, गलतियां उन्होंने भी की थी। मैं तो कबीर के बहु पत्नीत्व की बात को दुराचार या वामाचार नहीं मानता समय के संदर्भ में। उस समय वो रिवाज था, उस रिवाज के अनुसार उनकी अनेक पत्नियां थी, दो पत्नियां थी। पहली जो थी उनकी पत्नी एक कमला थी, फिर धनिया या रमजनिया थी। बताया जाता है कि उनके दो संतानें थी, एक पुत्र था उसका नाम कमाल था, एक पुत्री थी जिसका नाम कमाली था। संतों की एक और विशेषता निर्गुणियों की दिखाई देती है कि वे जीने के लिए अपने व्यवसायों में रहते, घर गृहस्थी चलाते, अपना धर्म कर्तव्य निभाते और उसके साथ साधना सोपानों पर चढ़ते रहते थे। यानी एक दोहरी कसरत इस समय के लोगों में आपको दिखाई देगी कि ये लोग घर गृहस्थी के कर्तव्यों को तो निभाते रहे और साथ ही साथ अपना भजन, कीर्तन, पूजन, अर्चन, पठन पाठन, ये सारे काम वे नित्य करते थे। ये कबीर की जिंदगी से आपको मालूम होगा। कबीर की जिंदगी में एक और बात दिखाई देती है कि वे ऐसा मानते हैं कि मेरी जिंदगी जो सत्कारण और सभ्य बनी उसका कारण मेरे गुरुजी है। ये उनके जो गुरु थे स्वामी रामानंद, ये बड़े भलमानस थे, ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, पठन पाठन में काफी अच्छी गति थी, और इस अनपढ़ गवार इस अपने शिष्य को उन्होंने इस तरह से पढ़ाया, पाला पोसा गुरुकुल में अपनी, कि उस गुरु को कबीर पर अक्सर नाज हुआ करता था। वे उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी रामानंद। वो जो एक पंक्ति मैंने आपको इसके पहले बताई थी कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेता है, रामानंद का उल्लेख कबीर बीजक में अनेक स्थानों पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। कि जैसे मैंने इसकी पूर्व आपको समझाया है कि कबीर औपचारिक रूप से शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे, अनपढ़ थे वो। कबीर ने खुद एक जगह लिखा है दोस्तों, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुग का महातम, कबीरा मुख ही जनाई बात। मसी माने स्याही, कागद माने कागज, मसी कागज छुओ नहीं, यानी मैंने न कागज को स्पर्श किया है, न स्याही को मैंने स्पर्श किया है, न मैंने लेखनी हाथ ली है, न कागज मैंने उठाया है, मैं तो काला अक्षर भैंस बराबर था, अनपढ़ था। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मैंने हाथ में कभी लेखनी नहीं ली। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुग का महातम। फिर भी आपको आश्चर्य होगा कि कबीर का ज्ञान कितना था, चारों युगों का ज्ञान था, चार युगों की जानकारी उसके पास थी। त्रिकाल संध्या नाम का एक शब्द चलता है कि जो निरंतर पूजा पाठ करते रहते हैं, जो निरंतर भक्ति में रमे रहते हैं, ऐसे लोगों का ज्ञान पोथी पत्रा पढ़ने वाले लोगों से ज्यादा होता है। जितने भी हमारे इस युग के संत हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जो समझदार शब्द नाम की बात मैंने बताई थी, वो समझदारी इनकी थी कि चारों युग का महातम, ये चारे युग की जानकारी, चारे युग की महत्ता, चारे युग का ज्ञान उनको कैसे था। कबीरा मुख ही जताई बात, कबीरा ने खुद ये सारा ज्ञान मात्र श्रवण से सुनकर, पढ़ तो नहीं सकते थे, तो सारा ज्ञान उन्होंने सुनकर ग्रहण किया। और कबीर ने जो सारे पद लिखे, ऐसा हम कहते हैं, वो सारे पद भी दोस्तों उन्होंने लिखे नहीं है, वो उन्होंने बताए हैं। कबीर में एक ऐसी प्रतिभा थी कि अक्षर ज्ञान के बिना, उस प्रतिभा के बल पर वे ऐसी ऐसी काव्य रचनाएं रचते थे कि उनके शिष्य वो लिखा करते थे। ऐसा बताया जाता है कि समय समय पर कबीर के पदों को उनके भक्तों ने लिख लिया और उसका संग्रह आज जिस ग्रंथ की हम बात करते हैं, कबीर बीजक या कबीर ग्रंथावली, वो समय समय पर शिष्यों द्वारा संग्रहित कबीर की बताए पदों की वो लिखित आवृत्ति है। कबीर ने और एक जगह अपने अनपढ़ होने की बात अंत साक्ष्य के आधार पर दोस्तों बताई है। एक जगह उन्होंने लिखा है, आखन देखा लिख दिया, लिख दिया मैंने लोगों को बताया, मैंने लोग लिखने वाले अलग थे, कि जो उन्होंने आंखों से देखा, आंखों से देखा माने जीवन का जो अनुभव तजुर्बा था, उस तजुर्बे से वे सीखते गए और तजुर्बे से बताते रहे। ये हमारे मराठी में एक वाक्य है, देखो, अनुभवासारखा श्रेष्ठ शिक्षक नाही। कबीर के साथ ये बात ठीक बैठने वाली बात कि कबीर ने जो भी ज्ञान हासिल किया था वह अनुभूति से, अनुभव से, जीवन ज्ञान से, जीवन शिक्षा नाम की एक शिक्षा महात्मा गांधी बताते थे। महात्मा गांधी ने भी यही बात हमें आजादी के पूर्व काल में समझाई थी। उनकी जो बुनियादी शिक्षा है, वो बुनियादी शिक्षा क्या थी, वो जीवन जीने के लिए जिन कौशल्यों की जरूरी होती है उन्हें आत्मसात करो, अपना जीवन अपने आप आत्मनिर्भर होता है। कबीर आत्मनिर्भर थे, वह आखन देखी के आधार पर थे। आखन देखा लिख दिया, यही हमारी बात, मेरा ज्ञान क्या है, कुछ नहीं है, मैंने कोई पोथी पत्रा नहीं पढ़ा, मैंने ज्ञान ग्रंथ नहीं पढ़े, मैंने कोई रामायण महाभारत नहीं पढ़ा, मैंने जो सुना सज्जनों से, जो देखा वो लिख दिया, वही मेरा साहित्य बन गया। और एक जगह है बीजक में कबीर लिखता है कि उससे भी उसकी समझदारी हम जान सकते हैं, विज्ञान परऊ वाद नहीं जानो। ये मैं मेरे प्यारे छात्रों आज की तारीख में आपको बताना चाहूंगा, कि आप पढ़ रहे हैं ना, एमए कर रहे हैं। एमए करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, मुझे तो लगता है मैं पीएचडी भी हूं, पीएचडी होने से कुछ नहीं होता, वो एक औपचारिक शिक्षा व्यवहार है। सही शिक्षा क्या है, सही शिक्षा हमें क्या सिखाती है, हमें उस पर गौर करना चाहिए कि हम मास्टर ऑफ आर्ट होते हैं। माने ये आर्ट क्या है, आर्ट और कुछ न होकर जीने की कला है। एमए होने पर, कबीर पढ़ने पर आपके आचरण और विचार में परिवर्तन नहीं होगा तो आपका एमए होना बेकार है। कबीर ने क्या बताया था देखो, विज्ञान परव, मैंने विज्ञान नहीं पढ़ी, मैंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, विज्ञान परव वाद नहीं जानो। आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा वाद करते हैं, अनपढ़ आदमी सहता सुनता रहता है। कबीर कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी से खंडन मंडन नहीं किया, वाद विवाद नहीं किया, बस मैंने एक ही बात अपनी जिंदगी में तय की थी, स्वीकार की थी, भैया कि मैं निरंतर दुनिया लगन से देखा करता था, लगन से सोचा करता था दुनिया को और ग्रहण करता जाता था। हमारी शिक्षा दीक्षा में, मैं तो शिक्षा शास्त्र भी पढ़ा चुका हूं, शिक्षा शास्त्र महाविद्यालय का प्राचार्य भी था, बीए बीएड के छात्रों को पढ़ाता था, मैं उनको उस समय समझाता था कि आप अध्यापक बनने वाले हो, ऐसे अध्यापक बनो कि जो तुमको तोता रटन न सिद्ध कर दे। कि कुछ लोग बाबा वाक्यम प्रमाणम जैसा पढ़ाते रहते हैं कि पुस्तकें पढ़ी और पढ़ाने का काम किया, वो तो एक रीति है। उससे परे जाकर मैं उनको बताता था कि शिक्षा का एक महान सूत्र है, सीइंग इज बिलीविंग, कि जो आप देखते हैं उस पर विश्वास करो, जो सुनते हैं, ये मराठी में है ना कि आंखें और कान में चार उंगलियों का अंतर है, ये चार उंगलियों का अंतर कबीर भलीभांति जानते थे। कबीर ने सुनी सुनाई बात पर कभी विश्वास नहीं किया, आंखें देखी पर कवि का विश्वास था। कबीर का साहित्य श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वह आखन देखी पर आधारित है, और वह आखन देखी पर आधारित था इसलिए वाद विवाद को छेद देकर, तोता रटन को छोड़कर, कंठस्थ या पाठांतर को छोड़कर, उन्होंने अपनी एक तर्क की प्रक्रिया विकसित की थी और उसके आधार पर वे पढ़ते गए। ऐसा माना जाता है कि उस समय क्या हमारे संत, क्या नामदेव, क्या नानक, क्या कबीर, क्या तुकाराम, ये सारे इस समय के मध्ययुगीन जो संत थे ना, ये पढ़े लिखे न होकर भी उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया था उसका रहस्य क्या था। ये लोग जगह जगह पर तीर्थाटन के बहाने, यात्रा के बहाने जाते और नए नए प्रदेशों को, संस्कृतियों को, आदमियों को, उनके रीति रिवाजों को, जीने के तरीकों को, वो मराठी में एक वाक्य है दोस्तों, केला ने देशाटन, कि जब तक आप दुनिया नहीं देखते आपकी समझ विकसित नहीं होती, आपका तर्क विशाल नहीं होता, आपकी सोच पक्की नहीं होती, तो सोच पक्की होने की बात है वह तीर्थाटन, आज की तारीख में जिसको हम पर्यटन कहा करते हैं, पर्यटन से होता है, देशाटन से होता है, देशाटन की जो लोक शिक्षा होती है कि मैं तो कितने देश देख चुका हूं। मेरी अपनी मान्यता है कि महाराष्ट्र से बाहर भारतवर्ष को देखते समय मेरी सोच विकसित हो गई, भारत से बाहर यूरोप एशिया देखते हुए मेरी सोच विकसित हो गई। कबीर का भी वह था कि कबीर झांसी में थे, मगहर में थे, जौनपुर में थे, मनिकापुर में थे, गागरोनगढ़ में थे, मथुरा में थे, गुजरात में थे, काशी में थे। इन नामों को सुनकर भी आपको प्रदेश का अंदाज आएगा कि वे उत्तर प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश में थे, गुजरात में थे। भटकता रहा था, ये घुमक्कड़ था ये हमारा संत कवि, और घुमक्कड़ी से उन्होंने जो ज्ञान ग्रहण किया था, इसी से उनके ज्ञान में गहराई आ गई थी। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया था कि उनकी मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में विवाद है, लेकिन कबीर ने एक जगह खुद लिखा है कि अपने अंतिम काल में वे काशी छोड़कर मगहर चले गए, एक देहात में, दूर दराज शांतिपूर्ण जीवन वृद्धावस्था में जीना चाहते थे, तो मगहर में जा बसे और वहां उनका इंतकाल, उनकी मृत्यु 1575 में हुई थी। ये जो कबीर की जाति जीवनी है, इस जाति जीवनी को मैं इसलिए आपके सामने व्यवस्थित रूप से, विस्तार से रख रखने का प्रयास कर रहा हूं कि तब आपको पता चलेगा कि ये महात्मा संत कैसे बना, क्यों बना, और ऐसी जिंदगी उसने गुजरी थी, ऐसी यातनाएं जाति जिंदगी में उन्होंने सही थी। ये जाति शब्द हिंदी में व्यक्तिगत इस अर्थ में आता है, वो मराठी जाति से उसका कोई संबंध नहीं है, नहीं तो आप कहेंगे जाति जाति माने जात वाली बात है, वो नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि व्यक्तिगत जीवनी को कबीर के जानने के बाद हम जब उनके व्यक्तित्व को देखने का प्रयास करते हैं, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व दोहरा होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। यदि हम कबीर की पर्सनैलिटी को जान लेने का प्रयास करेंगे, जीवनी तो जान ली हमने, लेकिन कैसे थे कबीर एक इंसान के रूप में, एक शख्सियत के रूप में, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये अक्कड़ फक्कड़ फकीर था। अक्कड़ फक्कड़ फकीर माने, एक हिंदी में हम शब्द प्रयोग करते, मन की खुशी दिल की बात। मन की खुशी दिल की बात यह है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको हम जिंदा दिल कहा करते। कबीर जिंदा दिल थे। एक तो उनकी अपनी कोई जाति नहीं थी। मैं ऐसे लोगों को सच्चा इंसान मानता हूं कि जिनकी अपनी कोई जाति नहीं होती, जिनका अपना कोई धर्म नहीं होता, बस जो जनगणना में अपनी जाति मनुष्य लिखते हैं, जो जनगणना में अपना धर्म मानव लिखते हैं। मैं ऐसे कबीरपंथी लोगों की इज्जत करने वाला इंसान हूं। कबीर मेरे लिए इसलिए आराध्य है जाति तौर पर, व्यक्तिगत जिंदगी में, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अंदर बाहर एक था। जिस सदी में दोस्तों हम जी रहे, इसको कहा करते हैं कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का एज है, दोहरे मापदंड से जीने वाले लोग हैं। हम दिखाते एक है और होते एक है। कबीर ऐसा नहीं था। कबीर का व्यक्तित्व परम संतोषी था, विपरीत स्थिति में जीते थे, लेकिन मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसी उनकी वृत्ति। आप एक एक कबीर के दोहों को पढ़ोगे तो आपको उनकी स्मृति का पता चलेगा कि इतनी विपन्न अवस्था में कि पैदाइशी मां बाप के दर्शन नहीं किए थे, जो संवेदनशील मां बाप थे जिन्होंने उनको पाला पोसा था, अपनी जन्मदाता मां के प्रति कभी शिकायत का स्वर कबीर की किसी पंक्ति में आपको दिखाई नहीं देगा कि जो जिंदगी मेरे हिस्से में आई है, मैं नसीब की भी बात नहीं करता, मैं हिस्से की बात करता हूं, कि जो जिंदगी मेरे हिस्से में आई है उस हिस्से के साथ मैं खुश हूं। मुझे मालूम है कि मेरा हिस्सा कैसे साझा करना है, कैसे समृद्ध करना है। ऐसे परम संतोषी थे, उदार थे, कुछ नहीं था उनके पास, अकिंचन थे, न जमीन, न जुमला, न संपत्ति, न धन दौलत, न नाता रिश्ता, फिर भी उदार थे, दुनिया को अपना मानते थे और ये सब होकर भी स्वतंत्र चेता थे। स्वतंत्र चेता माने कि अपनी बुद्धि दिमाग समझ के आधार पर चलना। मैं बाद में कभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्वतंत्र चेता थे, उन्हीं की एक काव्य पंक्ति मुझे याद आती है दोस्तों। कबीर ने कहीं कहीं बीजक में अपने से भी बात की है। हमारे साथ तो कबीर बात करता ही है, लेकिन जगह जगह पर वो अपने खुद के साथ बात करता है। ये खुद के साथ बात करना, मैं आपको समझा दूं मेरे प्यारे छात्रों, कभी तुम आईने में देखते होंगे, मेरी उम्र से तो आप जवान हो, आईने में देखना समय का तकाजा है, आपकी उम्र का तकाजा है। हर कोई, मेरी तो उम्र 65 साल की है, मैं आज भी आईना देखता हूं, लेकिन आपके आईने देखने में, दर्पण देखने में, आरसे में देखने में और मेरे देखने में अंतर है। मेरा देखना कबीर का देखना है। एक केरल का कवि था दोस्तों, कुमार आशान। कुमार आशान ने केरला में एक मंदिर बनाया है, कभी जाकर देखो, कुमार आशान का मंदिर। में क्या है, मंदिर है, विधिवत मंदिर है, कलश है, चौकोटा है, प्रदक्षिणा है, सीढ़ियां है, सब है, अपने ही मंदिर जैसा, आम मंदिर जैसा, भारत में आम मंदिर होते वैसा। लेकिन मंदिर के गृहगर्भ में क्या है, मंदिर के गृहगर्भ में कुमार आशान के मूर्ति नहीं है, रखा हुआ है आईना, कि आदमी जाते हैं आईने के सामने खड़े होते हैं और सब एक पल भल के लिए खड़े होते हैं। वो ध्यान मंडपम की जो बात होती है कि आदमी अंतर्मुख हो जाकर खड़ा होता है, कुमार आशान की कल्पना थी, क्षण भर अपने ही गिरेबान में झांक कर देखो और सोचो कि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। कबीर भी, कबीर महात्मा क्यों बने, कबीर का व्यक्तित्व महान क्यों, तो कबीर ने अपने से, जो लोग अपने से संवाद करते हैं, अपने से प्रश्न करते हैं, अपनी समीक्षा करते हैं, वो बड़े होते हैं। कबीर ने एक जगह लिखा है, अपनी राह तू चले कबीरा, कि लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत कर, अपनी विवेक के आधार पर तुम्हें जो भी बात पसंद आएगी उसी राह से चल। अपनी राह पर चलना, अपनी राह पर चलना बड़ी बात होती है। हिंदी में एक पंक्ति है, कुत्ते भूखे हजार, हाथी चला बाजार। हाथी जैसा मस्त होकर अपनी ही उसूलों पर, अपनी जीवन दृष्टि को लेकर चलते चलो, एक समय आएगा दोस्तों कि तुम्हारे पीछे कारवां निकल आएगा। जितने भी महात्मा है, महात्मा गांधी ने एक बात हमें सिखाई और हजारों भारतीय उनके अनुयायी बने, कबीर के अनुयायी उस समय बने, वो उनकी इस स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व के ही कारण। बड़े निर्भीक थे कि परवाह नहीं करते थे कबीर कि मैं जो कह रहा हूं उसका दुनिया पर क्या असर होगा। आज की तारीख में मुझे याद आता है कबीर की निर्भीकता को देखकर, मुझे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर याद आते हैं, मुझे कॉम्रेड पानसरी याद आते हैं, मुझे कलबुर्गी याद आते कि समय से आगे जाकर कहने की बात, परिवर्तन और सुधार जिनके जहन में बैठी हुई बात होती है, ऐसे लोग समय की परवाह नहीं करते। जिंदगी की परवाह नहीं करते, वो आगे की सोचते हैं, वो मानव के अंतिम कल्याण की बात सोचते हैं। कबीर ऐसा निर्भीक था। उनके आज भी कुछ दोहे आप पढ़ेंगे तो उनके भविष्यलक्षी होने का अंदाज दोस्तों आता है, क्योंकि वह सत्यवादी था कि जिसमें मनुष्य का अंतिम हित बना हुआ है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, क्या व्यवहार करते हो, किस जाति के हो, किस लिंग के हो, ये सारी गैर बातें हैं, कबीर मानता था। कबीर कहता है कि गिरेबान तुम्हारा कितना साफ है, तुम कितने साफ सुथरे अंदर बाहर, तुम कितने पारदर्शी हो, कितने मनुष्य लक्षी हो, ये उनकी बात थी। तभी तो हम कबीर को अंधविश्वास विरोधी, सुधारवादी, सुधारक कवि मानते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात थी, देखो कि समय के आगे जाकर सोचना। प्रतिभावान तो थे ही कबीर, कि पैदाइशी प्रज्ञा उनके पास थी, तभी तो कितने सुंदर उदाहरण, कितनी सुंदर उपमाएं, कितने सुंदर रूपक, वो कस्तूरी मृग की बात मैंने बताई, कितना सुंदर दृष्टांत है। तो ऐसे सुंदर सुंदर दृष्टांतों को पिरोते ये कवि हमें जिस तरह से समझाता है, वो समझाने की बात मुझे उनके व्यक्तित्व की महानता मालूम होती है। मैं उनको युग प्रवर्तक मानता हूं। ऐसे हस्तियों को युग प्रवर्तक माना जाता है कि जो वर्तमान को बदलने में विश्वास रखते हैं और मनुष्य समुदाय को समय से आगे ले जाकर उसको आज से बेहतर बनाने का प्रयास करने वाले लोग युग प्रवर्तक थे। महात्मा गांधी युग प्रवर्तक क्यों? क्योंकि उन्होंने गुलामी का एहसास हमें दिलाया। महात्मा संत कबीर महात्मा क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि तुम गलत राह से जा रहे हो, तुम गलत तरीके से ईश्वर को देख रहे हो, ईश्वर की ओर देखने का ये सही तरीका नहीं है। ये सही तरीका है निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति, और वह भी सदाचार से करना, कर्मकांड मुक्त ईश्वर की प्राप्ति करना। ऐसा नया मार्ग बताने वाला यह कवि मेरी दृष्टि से एक तरह से युग प्रवर्तक कवि है। सबसे बड़ी बात मुझे कबीर की लगती है, कबीर बताया जाता है, इतिहासकार हमें बताते हैं कि वह हिंदू मां की कोख में पैदा हुआ था, लेकिन पला हुआ था मुस्लिम परिवार में। तो पैदाइशी हिंदू मुस्लिम परिवार में पला था, उसकी जड़ें और उसका जीवन, वह हिंदू मुस्लिम एकता का सुंदर प्रतीक है। इस एकता के प्रतीक के कारण कबीर को एक पैदाइशी समन्वयवादी वृत्ति मिल गई थी। वो पैदाइशी दोहरे संस्कारों को लेकर जन्मे थे, और यही कारण था कि कबीर की सारी भक्ति पद्धति में आपको एक तरह से मुस्लिम एकेश्वरवाद के संस्कार और दूसरी तरफ उपनिषद के एकेश्वरवादी संस्कार या शंकर के अद्वैतवाद के संस्कार, तो बहुत संस्कारित होना या बहुसांस्कृतिक होना मेरी दृष्टि से, हमारे हिंदी में एक दो ग्रंथों की मैं चर्चा इस संदर्भ में करना चाहूंगा जो कबीर के पास हमें ले जाते हैं। एक है संस्कृति के चार अध्याय नाम का ग्रंथ, जो हमारे हिंदी के महाकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कुछ ही दिनों के पहले उनके लेखन का स्वर्ण महोत्सव हीरक महोत्सव हमने मनाया, उन्होंने उस संस्कृति के चार अध्याय में हमें बताया है कि भारत किसी एक धर्म और वंश की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति न सिर्फ हिंदू धर्म की है, भारत की संस्कृति हिंदू धर्म की है, बुद्ध धर्म की है, जैन धर्म की है, मुसलमान धर्म की है, इस्लाम धर्म की है, क्रिश्चियन धर्म की है, पारसी धर्म की है, सिख धर्म की है। बहुधर्मीय बहुवंशीय संस्कृति का एक नाम दिनकर जी रखते हैं, नेहरू जी की उसको प्रस्तावना है, वह उसको समसामायिक संस्कृति मानते हैं। हमारे कबीर समसामायिक थे कि सबको ले जाकर, सब जाति धर्म वर्ण समुदाय वर्ग वंश लिंग सबको ले जाकर एक मनुष्य नाम का समाज निर्माण करना उनका लक्ष्य था, और इसलिए वह एकेश्वरवादी थे, एकतावादी थे, समन्वयवादी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी थे। बात कबीर के कितने पद मैं आपको बताऊंगा कि न सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि इस्लाम पर भी वे आघात करते आपको दिखाई देते हैं। ये मुस्लिम मौलवी सुबह के समय बांग लगाते हैं, उच्चारों से अपने ईश्वर का पुकारा करते हैं। कबीर ने एक जगह पूछा है, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है कि इतने जोर से चिल्लाते हो? तो हमारे पत्थर की मूर्तियों की विरोध करने वाले कबीर इस्लाम के बाग का भी विरोध करते हैं। मंदिर और मस्जिद का विरोध करने वाले कबीर कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के क्या मंदिर मस्जिद बनाया। सिर्फ मंदिर की बात नहीं करते, मस्जिद की भी बात करते हैं। तो यह एक ऐसा महान संत है कि जो छोटे छोटे तबकों को छोड़कर एक हमारे मनुष्य समुदाय को एक बनाने की सोचता है, ये उनकी महानता है। मेरी दृष्टि से, मेरे आकलन से, जो कबीर का साहित्य और उसकी जाति जिंदगी जो मैंने जानी, मैं कबीर को किसी जात संप्रदाय का नहीं मानता, मैं उनको एक मानवतावादी कवि मानता हूं। मैं जब उनको मानवतावादी मानता हूं तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको यह समझा दूं कि वह कैसे जाति धर्म से परे थे। उनकी ही दो रचनाओं को, दो दोहों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक उनके दोहे में कबीर ने कहा है, कह हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक है रहमाना, आपस में दो लरी मुए मर्म न काहू जाना। यानी हिंदुओं पर भी वो प्रहार करते हैं और इस्लामियों पर भी प्रहार करते हैं। क्या कहते हैं देखो, कह हिंदू मोही राम, हिंदू कहते राम मेरा है, मेरा प्यारा है। कह हिंदू मोही राम प्यारा, हिंदू कहते राम मेरे लिए प्रिय है। तुर्क कहे रहमाना, तुर्क कहते मेरा ईश्वर रहमान है। क्या राम क्या रहमान, कबीर के लिए दोनों समान है। आपस में दो लरी मुए, ये दोनों इंसान मुसलमान और हिंदू, ये करते क्या है, आपस में लड़ने झगड़ने का ही काम करते हैं। ऐसे दोनों को वो फटकारते हैं, दोनों को नकारते हैं और कहते क्या है, मर्म न काहू जाना। ये दोनों भी मर्म नहीं जानते, जिंदगी का मर्म आपसी फूट डालने वाला धर्म नहीं है, जिंदगी का मर्म दोनों को जोड़ने वाला इंसान धर्म है, ये कबीर की सीख है। और एक पद मैं आपको साझा करना चाहूंगा जिसमें वे कहते हैं, देखो हिंदू तुर्क की एक राह है। ये आपको भलीभांति समझना चाहिए कि दोनों धर्म बैर नहीं सिखाते, बैर कोई भी धर्म नहीं सिखाता दोस्तों, न इस्लाम सिखाता है न हिंदू सिखाता है, बैर सिखाते दुश्मन, धर्म के दुश्मन बैर सिखाते हैं। हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु यह है बताई। जो संत होता है, सच्चा संत होता है, वो एकता की राह बताता है, राष्ट्रीय एकता की बात करता है। मेरे लिए कबीर का व्यक्तित्व और साहित्य राष्ट्रीय एकता का साहित्य है। हिंदू तुर्क, तुर्क माने तुर्क मुसलमान, हिंदू तुर्क की एक राह, दोनों धर्म हिंदू और इस्लाम धर्म एक ही राह बताता है, वह सभ्यता का, एकता का, मनुष्य हित का। हिंदू तुरक की एक राह है, सदगुरु यही बताई, जो सच्चा संत है यही बताता है कि एक ही से रहो, दुश्मनी मत करो। कहे कबीर सुनहो संतो, कबीर कहे सुन भई साधो, जैसे है ना, कहे कबीर सुनहो संतो, रामन कहे वो खुदाई। राम कभी भेद नहीं बताता, रहमान कभी भेद नहीं बताता, इस बात पर गौर करो और आपस के बैर को भूल जाओ। तो प्यारे मेरे छात्रों, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कबीर की जिंदगी और उसके साहित्य को समझ लेना, ये सिर्फ तफसील समझना नहीं है, तफसील के अंदर जो तत्व है इसको समझ लेना इनकी जिंदगी की सीख है। वो यदि आप सीख लोगे तो कबीर की तरह आपका जीवन भी व्यापक, उदार और मनुष्य हितलक्षी होगा। वैसी कामना करके मैं इस व्याख्यान में विदा लेता हूं। धन्यवाद।